आगे सबक देखिए भाई, फसलुन वला यनअकिदु शिरकतु इल्ला बिद्दराहिमि वद्दनानीरि वल्फुलूसिन नाफिकह وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز بالعروز والمكيل والموزون إذا كان الجنس واحدا لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود. بھئی گزشتہ سبق میں آپ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ دو شریک ہیں جنہوں نے آپس میں عقد مفاوضہ کیا ہوا ہے اور ان میں سے ایک شریک جو ہے کسی اجنبی کی طرف سے کفیل بن جاتا ہے مال کا بھائی. تو آپ نے پڑھا کہ یہ جو شریک جو کفیل بن گیا ہے اجنبی کی طرف سے مال کا، یا تو یہ اس اجنبی کے کہنے پر کفیل بنا ہے یا اس کے کہے بغیر ہی کفیل بنا ہے. اگر اس اجنبی کے کہنے پر یہ کفیل بنا ہے تو اگر اس کفیل کو وہ مال ادا کرنا پڑا تو وہ اس اجنبی سے اس کا ضمان وصول کر سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ مال ادا کرنا پڑا، لہذا آپ مجھے اس کا ضمان ادا کریں. لیکن اگر وہ شخص کفیل بنا ہے اس اجنبی کے کہے بغیر ہی، تو اس صورت کے اندر یہ کفیل اگر مال ادا کر دے تو پھر یہ اس اجنبی پر یعنی اس مکفول عنہ پر رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اجنبی کہے گا کہ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری طرف سے ضامن بنے اور میری طرف سے مال ادا کریں، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کفیل اس اجنبی پر رجوع نہیں کر سکتا، معنی یہ ہے کہ جبرن اس پر رجوع نہیں کر سکتا. جب یہ کفیل اس اجنبی کے کہے بغیر کفیل بنا ہے اور پھر اس نے مال ادا کیا ہے تو یہ جبرن اس پر رجوع نہیں کر سکتا، یعنی کہ اسے قاضی کے پاس لے جائے اور اس سے ضمان وصول کر لے، ایسا نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اگر اس اجنبی کے کہنے پر اس نے ضمانت دی تھی اور پھر اسے مال ادا کرنا پڑا تو پھر یہ جبرن اس سے ضمان وصول کر سکتا ہے قاضی کے پاس لے جا کر بھی بھائی. تو صورت مسئلہ یہ ذکر ہو رہی تھی متن کے اندر کہ اگر دو شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ کسی اجنبی کی طرف سے کفیل بن گیا اور اس اجنبی کے کہنے پر یہ کفیل بنا ہے، تو کیا اس کفیل کے شریک سے بھی اس دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے یا نہیں، کیا اس پر بھی یہ دین لازم ہوا ہے یا نہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کفیل کے شریک پر بھی یہ دین لازم ہو گیا ہے، اس سے بھی اس مال کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عقد کفالت جو ہے عقد تبرع ہے اور ایک شریک کا تبرع دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتا. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ کسی کی طرف سے کفیل بننا چاہیں یا نہ بننا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے. معلوم ہوا عقد کفالت عقد تبرع ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد کفالت جب عقد تبرع ہے تو ایک شریک کا تبرع وہ دوسرے شریک پر لازم نہیں ہو سکتا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے اسی وجہ سے بچہ اور عبد معزون اور مکاتب جو ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہیں، اور یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے اسی وجہ سے مرض الموت میں مبتلا مریض جو ہے وہ اپنے ثلث مال سے زائد کے اندر کفیل نہیں بن سکتا. چنانچہ یہ جو کفالت بالمال ہے بامر الاجنبی، یہ کفالت بھی نفس کی طرح ہو گئی، اور کفالت بھی نفس کے اندر جو شخص کسی کی جان کا کفیل بن گیا اس کی ذات کا کفیل بن گیا. مثلا آپ زید کی ذات کے کفیل بن گئے کہ زید کو فلاں دن قاضی کے پاس حاضر کرنا میری ذمہ داری ہے، تو یہ کفالت بھی نفس ہے، اور کفالت بھی نفس میں جو کفیل بنتا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس مکفول عنہ کے حاضر کرنے کا، دوسرے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کفالت بالمال بھی کس کی طرح ہو گئی؟ کفالت بالنفس کی طرح ہو گئی. اور نیز یہ کفالت بالمال جو ہے یہ اقراض کی طرح ہو گئی. جیسے اقراض کے اندر جس जिस जो शरीक कर्ज लेता है सिर्फ उसी से कर्ज का मुतालबा हो सकता है, दूसरे शरीक से उसका मुतालबा नहीं हो सकता। तो साहिबैन फरमाते हैं ये अक़्द कफालत अक़्द तबर्रो है, तो ये इकराज और कफालत भी नफ्स की तरह हो गया। और जैसे उनके अंदर सिर्फ कर्ज वाले से या कफील से मुतालबा हो सकता है, शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता, तो कफालत बिल माल के अंदर भी शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने इमाम साहिब की दलील जिक्र फरमाई थी कि इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो कफालत बिल माल है बी अम्रिल मकफूल अनहु या बी अम्रिल अजनबी कह लें, तो ये जो कफालत बिल माल है बी अम्रिल अजनबी ये इब्तिदा के एतबार से अक़्दे तबर्रो है, लेकिन इंतहा के एतबार से यह अक़्दे मुआवजा है, क्योंकि अगर ये कफील माल अदा कर देता है तो फिर ये उस मकफूल अनहू पर यानी उस अजनबी पर रुजू कर सकता है कि आपके कहने पर मैंने जमानत दी थी और आपकी वजह से मुझे ये माल अदा करना पड़ा, अब आप मुझे इसका जमान अदा करें। तो मालूम हुआ यह कफालत मिल माल जो भी अम्रिल अजनबी हो यह इब्तिदा के एतबार से तो तबर्रो है लेकिन इंतहा के एतबार से मुआवजा है। तो अक़्दे मुफावजा इसको भी मुतज़म्मिन हुआ, क्योंकि अक़्दे मुफावजा जो किया जाता है वो अक़्दे मुआवजा के अंदर शिरकत के लिए किया जाता है कि जो भी अक़्दे मुआवजा दोनों में से कोई एक करेगा दूसरा उसमें शरीक होगा। तो लिहाजा यहां पर भी इस माल का मुतालबा उसके शरीक से किया जा सकता है भाई। और फिर साहिब हिदायत ने इमाम साहिब की तरफ से जवाब भी दिया था, साहिबैन ने जिक्र किया था कि अक़्दे कफालत अक़्दे तबर्रो है, इसीलिए बच्चा और अब्दे माजून और मुकातब इसके अहल नहीं है। तो उसका जवाब दिया कि हमने जिक्र कर दिया कि इब्तिदा के एतबार से यह अक़्दे कफालत जो है यह तबर्रो है, तो इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए बच्चा और अब्दे माजून और मुकातब इसके अहल नहीं, और इसी इब्तिदा की तरफ नजर करते हुए चूंकि यह अक़्दे तबर्रो है इसीलिए मरीज जो मरजुल मौत में मुबतला है उसके माल के सुलुस से जायद के अंदर यह कफालत सही नहीं है। और जहां तक कफालत भी नफ्स की बात है तो वह तो इब्तिदाअन भी तबर्रो है इंतहाअन भी तबर्रो है, उसके अंदर तो उस शख्स को हाजिर करना है, यहां मुआवजे वाली कोई सूरत नहीं है भाई। तो ये कफालत भी नफ्स इब्तिदा अन भी तबर्रो है और इंतहा अन भी तबर्रो है भाई। और नीज फिर इकरार का भी जवाब दिया था, साहिबैन फरमाते थे कि कफालत बिल माल जो है ये इकरार की तरह है, कर्ज देने की तरह है, और इकरार के अंदर जिसको कर्ज दिया जाता है सिर्फ उसी से मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से मुतालबा नहीं हो सकता। तो उसके दो जवाब दिए, एक इनकारी जवाब दिया और एक तस्लीमी। पहला इनकारी जवाब दिया कि आपका यह कहना कि इकरार के अंदर सिर्फ उस कर्ज लेने वाले पर कर्ज लाजिम होता है, उसके शरीक पर कर्ज लाजिम नहीं होता, हमें आपकी यह बात तस्लीम नहीं है, बल्कि उसके शरीक पर भी यह कर्ज लाजिम हो जाता है और उससे भी मुतालबा किया जा सकता है। वजह यह कि यह इकरार भी अक़्दे मुआवजा है। एक आदमी दूसरे से 100 दिरहम ले आया और इसने वो दिरहम खर्च कर दिए, अब एक महीने के बाद जब ये दिरहम वापस करेगा तो ये वो वाले दिरहम नहीं है, ये और दिरहम हैं, तो ये दिरहम वो उन दिरहमों के इवज के तौर पर दे रहा है, तो ये इकरार भी अक़्दे मुआवजा है। तो आपका जो ये जो दावा है कि इकरार दूसरे शरीक पर लाजिम नहीं होता, हमें यह तस्लीम नहीं, इमाम साहब की एक रिवायत के मुताबिक ये इकरार भी दूसरे शरीक पर लाजिम हो जाता है, उससे भी इस कर्ज का मुतालबा किया जा सकता है। और दूसरा जवाब तस्लीमी दिया था कि हमें आपकी बात तस्लीम है, इकरार की वजह से जो कर्ज आया है वो सिर्फ उसी शख्स से मुतालबा हो सकता है जिसने कर्ज लिया है, उसके शरीक पर यह कर्ज और ये दैन लाजिम नहीं है भाई। और वजह यह कि इकरार जो है वह इआरा है। तो पहला जवाब इनकारी था, उसमें कहा था कि यह इकरार यह अक़्दे मुआवजा है, और दूसरा जवाब तस्लीमी दिया कि हमें आपकी बात तस्लीम है, इकरार जो है वह अक़्दे मुआवजा नहीं है बल्कि यह इआरा है भाई। यह क्या है? ये इआरा है, यानी ये अक़्द तबर्रो है, क्योंकि मैंने आपको बतलाया इआरा यानी आरियतन किसी को कोई चीज देना यह अक़्द तबर्रो है, आपसे कोई चीज इस्तेमाल के लिए ले जाता है और फिर वापस कर देता है तो इसको आरियत कहते हैं भाई। बात समझ में आ गई। तो दूसरे जवाब के मुताबिक एक शरीक का इकरार दूसरे पर लाजिम नहीं होता क्योंकि ये इआरा है। अलबत्ता इआरा के अंदर ऐन वही चीज वापस की जाती है जो इस्तेमाल के लिए ली थी, लेकिन इकरास के अंदर जो है वहां पर तो उस कर्ज का मिसल वापस किया जाता है। जो दिरहम लिए थे वो तो खर्च कर दिए, अब उसके मिसल दिरहम वापस किए जा रहे हैं, लेकिन इस मिसल का भी वही हुक्म है जो ऐन उन असल दिरहमों का था। यूं समझेंगे बेआईन ही वही दिरहम वापस किए जा रहे हैं भाई। और चूंकि ये कर्ज इआरा है इसीलिए तो इसके अंदर मुद्दत का मुकर्रर करना सही नहीं। मैंने आपको बतलाया था कि आमतौर पर लोग जो हैं कर्ज लेते हैं तो उसमें मुद्दत मुकर्रर करते हैं, लेकिन कर्ज के अंदर याद रखो मुद्दत मुकर्रर करने से मुकर्रर नहीं होती, मुकर्रर नहीं होती, क्योंकि ये इआरा है और इआरे के अंदर भी मुद्दत मुकर्रर करना सही नहीं। वजह यह कि जो इआरा और इकराज है ये अक़्द तबर्रो हैं, और तबर्रो जो है वो चीज अदा करना जो आप पर लाजिम नहीं है। तो आप एक चीज को बतौर एहसान के अदा कर रहे हैं तो उसमें दूसरे पर जबर को लाजिम नहीं किया जा सकता कि इतनी मुद्दत के बाद आपको हर हाल में यह चीज वापस करना पड़ेगी। तो जब यह तबर्रो है तो इसके साथ जबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, जबर लाजिम नहीं हो सकता। लिहाजा मालूम हुआ इकराज यह अकदे मुआवजा नहीं है, यह इआरा है, और जब यह इआरा है तो यह तबर्रो है, और जब यह तबर्रो है तो एक शरीक का तबर्रो दूसरे शरीक पर लाजिम नहीं होता। और फिर साहिब हिदाय ने आपको यह भी बतलाया कि अगर दो शरीकों में से एक कफील बन गया है अजनबी का उसके कहे बगैर ही, पहली सूरत तो क्या जिक्र हो रही थी कि एक शरीक कफील बना था अजनबी के कहने पर, और दूसरी सूरत अगर ये शरीक जो है वो अजनबी के कहे बगैर ही कफील बन गया उसकी तरफ से, तो इसके अंदर तो वो जमान वसूल नहीं कर सकता। तो लिहाजा यहां पर इंतहा के एतबार से भी मुआवजे की सूरत नहीं है। तो वो कफालत बिल माल जो बगैर अमरिल अजनबी हो, यूं कहो जो बगैर अमरिल मकफूल अनहू हो, वो इब्तिदाअन भी तबर्रो है और इंतहाअन भी तबर्रो है, क्योंकि वहां पर जमान वसूल नहीं किया जा सकता, तो वहां मुआवजे की कोई सूरत नहीं। जब मुआवजे की कोई सूरत नहीं तो फिर उसके अंदर जिसने वो जमानत दी है वो जो कफील है उसी से दैन का मुतालबा हो सकता है, उसके शरीक से दैन का मुतालबा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो साहिब हिदाय ने बतलाया कि सही कौल के मुताबिक वो कफालत बिल माल जो बगैर अमरिल मकफूल अनहु हो उसका मुतालबा उसी कफील से हो सकता है, उसके शरीक से नहीं हो सकता। सही कौल के मुताबिक भाई, सही कौल के मुताबिक। और नीज ये भी बतलाया कि मतन के अंदर यानी जामे सगीर के अंदर तो यह मसला मुतलकन जिक्र है, वहां तो भी अमरिल अजनबी की कैद मौजूद नहीं। तो साहिब हिदाय ने बतलाया कि वहां पर अगरचे मसला मुतलकन जिक्र है लेकिन वह मुकैद पर महमूल है, यानी वहां पर कफालत भी अमरिल अजनबी मुराद है, मुतलक कफालत मुराद नहीं है। बात समझ में आ गई। लेकिन याद रखना, याद रखना बहुत से फुकाहा जो है वो मुतलक कफालत की तरफ गए हैं कि इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ जो है मुतलक कफालत के अंदर है। एक कफालत भी अमरिल अजनबी है, एक कफालत भी गैर अमरिल अजनबी है। तो साहिब हिदाय ने बतलाया मतन के अंदर मुतलक कफालत जिक्र है लेकिन मुराद क्या है, कफालत भी अमरिल अजनबी मुराद है। लेकिन याद रखना बहुत से फुकाहा इस बात की तरफ गए हैं कि ये जो इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है ये मुतलक कफालत के अंदर है, चाहे वो कफालत भी अमरिल अजनबी हो चाहे वो कफालत भी गैर अमरिल अजनबी हो, दोनों सूरतों के अंदर इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है भाई। इमाम साहब के नजदीक उस कफील के शरीक पर वो दैन लाजिम होगा दोनों सूरतों में, और साहिबैन के नजदीक दोनों सूरतों में उस कफील के शरीक पर वो दैन लाजिम नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि दो शरीकों में से अगर एक शरीक जो है किसी की चीज गसब कर लेता है और उसकी वजह से जमान उस पर लाजिम आता है, या एक शरीक किसी अजनबी की कोई चीज हलाक कर देता है और उसकी वजह से उस शरीक पर जमान आता है, तो यह गसब और इस्तेहलाक जो है यह भी इंतहा के एतबार से मुआवजा की कबील से है कि यह उस गसब का जमान दे रहा है या उस इस्तेहलाक का जमान दे रहा है, तो लिहाजा इस दैन का मुतालबा भी दोनों शरीकों से किया जा सकता है भाई। और उसके बाद साहिब हिदाय ने आपको बतलाया कि वो दो शरीक जिन्होंने आपस में अक्दे मुफावजा किया हुआ है, अगर उनमें से कोई एक ऐसे माल का वारिस बन गया जिसमें शिरकत सही है, यानी दिरहम और दीनार और फुलूस नाफिका यानी जो राइज पैसे हैं, तो अगर दोनों में शरीकों में से एक जो है उसको वरासत में दिरहम या दीनार वगैरह मिल गए, या उसको किसी ने दिरहम और दीनार वगैरह हिबा कर दिए, तो इस सूरत में अब दोनों का माल बराबर ना रहा, लिहाजा अक़्द मुफावजा बातिल हो जाएगा, क्योंकि मुफावजा की बुनियाद बराबरी पर है। इब्तिदा के अंदर भी दोनों शरीकों का माल बराबर होना चाहिए और बका के अंदर भी दोनों का माल बराबर होना चाहिए। तो जब एक को वरासत में या हिबा के अंदर ऐसा माल जायद मिल गया जिसके अंदर शिरकत हो सकती है, तो फिर एक का माल जायद हो गया, दोनों का माल बराबर ना रहा, लिहाजा अक़्द मुफावजा बातिल हो जाएगा और यह शिरकत ऐनान बन जाएगी। तो इस पर इश्काल होता है कि यह तो बकाअन शिरकत ऐनान बन रही है, ये जो शिरकत ऐनान बन रही है ये तो बकाअन है भाई, इब्तिदा यानी नया ऐनान का वो आकद तो नहीं कर रहे आपस में, तो ये तो बका की हालत में ये शिरकत ऐनान बन रही है। तो साहिब हिदायत ने बतलाया कि ये जो शिरकत है इसके दवाम का भी वही हुक्म होता है जो इब्तिदा का होता है। तो यहां पर ये जो बकाए ऐनान है इसको भी यूं ही समझेंगे गोया इब्तिदाए ऐनान है। बकाए ऐनान भी किसकी तरह है? इब्तिदाए ऐनान की तरह है। और वजह यह कि जो अक़्दे शिरकत होता है यह लाजिम नहीं होता। तो जैसे इब्तिदाअन लाजिम नहीं है, किसी की मर्जी है अक़्दे शिरकत करे और उसकी मर्जी है तो अक़्दे शिरकत ना करे, इसी तरह बकाअन भी अक़्दे शिरकत लाजिम नहीं होता। तो बका का भी वही हुक्म है जो इब्तिदा का है। तो यहां पर बका की सूरत में यह शिरकत ऐनान बन रही है, लेकिन बका का भी वही हुक्म है जो इब्तिदा का है। तो यूं समझो इब्तिदा ऐनान हो रही है। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि ये दो शरीक जिन्होंने आपस में अक़्द मुफावजा किया हुआ है, अगर दोनों में से कोई एक जो है ऐसे जायद माल का मालिक बन गया जिसमें शिरकत सही नहीं है, जैसे एक को विरसे में कुछ सामान मिल गया या कुछ जमीन वगैरह मिल गई, तो इस सूरत में अक़्द मुफावजा बातिल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अक़्द मुफावजा के अंदर दिरहम दीनार और राइज करेंसी के अंदर बराबरी जरूरी है और जमीन और सामान वगैरह में बराबरी जरूरी नहीं है भाई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन वला यनअकिदु शिरकतु इल्ला बिद्दराहिमि वद्दनानीरि वल्फुलूसिन नाफिका। भाई यहां से साहिब हिदायत आपको यह बतलाएंगे कि वो कौन सा माल है कि जिस पर अकद शिरकत किया जा सकता है, जिस पर शिरकत मुफावजा की जा सकती है। मैं पहले बयान कर चुका हूं कि शिरकत मुफावजा जो है वो सिर्फ दिरहम दीनार और वो जो राइज पैसे हैं उनके अंदर यह शिरकत मुफावजा हो सकती है, लिहाजा दोनों शरीकों के दिरहम दीनार और राइज करेंसी बराबर होनी चाहिए। अगर एक के पास 20 दिरहम है तो दूसरे के पास भी 20 दिरहम होने चाहिए भाई, और अगर दोनों का माल बराबर नहीं तो फिर अक़्द मुफावजा नहीं हो सकता, फिर वहां शिरकत ऐनान ही करना पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो अब वही साहिब हिदायत बयान फरमा रहे हैं कि किस माल के अंदर शिरकत सही है। तो कहते हैं फसलुन वला यनअकिदु शिरकतु इल्ला बिद्दराहिमि वद्दनानीरि वल्फुलूसि नाफिका। और शिरकत मुनाकिद नहीं होती मगर दिरहमों से, वद्दनानीरि और दीनारों से, वल्फुलूसि नाफिकति और राइज पैसों से। फुलूस कहते हैं पैसों को और नाफिका का माना है राइज, जो बाजार में चलते हैं भाई। तो कहते हैं शिरकत मुनाकिद नहीं होती, यानी शिरकत मुफावजा मुराद है। क्या मुराद है? शिरकत मुफावजा मुनाकिद नहीं होती मगर दिरहमों से या दीनारों से या राइज पैसों से। वकाल मालिकुन रहमहुल्लाहु तआला यजूज़ु बिल उरूज़ वल मकील वल मौज़ून इज़ा कानल जिन्सु वाहिदा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शिरकत मुफावजा है ये दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका के साथ साथ सामान और मकीलात और मौजूनात में भी हो सकती है। मौजूनात आप जानते हैं वो चीजें जिनको वजन करके बेचा जाता है, मकीलात वो चीजें हैं जिनको किसी पैमाने के अंदर किसी बर्तन वगैरह में माप कर बेचा जाता है। जैसे दूध जो है उसको बर्तन में माप कर बेचते हैं, तो दूध किस में से है? मकीलात में से। इसी तरह कदीम जमाने के अंदर यह गल्ला वगैरह जो है पैमाने के अंदर माप कर बेचा जाता था, तो यह मकीलात में से है भाई। और उरूस जो है इस सामान भाई, मकीलात और मौजूनात के अलावा और सामान है वो सब इसके अंदर आ गया, बर्तन है, कपड़े वगैरह और चीजें सब इसके अंदर आ गई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो शिरकत मुफावजा है ये सिर्फ दिरहम और दीनार वगैरह में नहीं हो सकता, बल्कि सामान और मकीलात और मौजूनात में भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है दोनों शरीकों के पास एक ही जिंस का माल होना चाहिए, यानी अगर एक शरीक के पास बर्तन है तो दूसरे के पास भी बर्तन होने चाहिए, अगर एक के पास गंदुम है भाई तो दूसरे के पास भी गंदुम होनी चाहिए, यानी जिंस एक होनी चाहिए। उस रासुल माल कहते हैं सरमाया, रासुल माल किसे कहते हैं? सरमाया। दो आदमी आपस में माल मिलाते हैं और तिजारत करते हैं, तो ये जो माल दोनों ने आपस में मिलाया इसको कहते हैं रासुल माल भाई, यानी असल सरमाया जो कारोबार के अंदर लगाया गया है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शिरकत मुफावजा जो है जिस तरह दिरहम दीना और फुलूस नाफका में सही है, इसी तरह सामान और मकीलात और मौजूनात में भी सही है, अलबत्ता रासुल माल एक जिंस का होना चाहिए। एक के पास अगर बर्तन है तो दूसरे के पास भी बर्तन होने चाहिए, एक के पास अगर गंदुम है तो दूसरे के पास भी गंदुम होनी चाहिए, यानी रासुल माल एक जिंस होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाल मालिक उन रहमहुल्लाह ताला, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं यजूज़ बिल उरूज़ वल मकील वल मौज़ूनी, कि ये शिरकत मुफावजा जायज है सामान के साथ भी और मकीलात और मौजूनात के साथ भी, इजा कानल जिन्स वाहिदन, जब इनकी जिन्स एक ही हो। हमारे नजदीक तो अक़्द मुफावजा सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका में जायज है और चीजों में जायज नहीं, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक सामान और मकीलात और मौजूनात में भी अक़्द मुफावजा जायज है। कहते हैं लिअन्नहा उक़िदत अला रअसि माली मालूमिन, इसलिए क्योंकि जो शिरकत मुफावजा का अक़्द किया जाता है यह मालूम रअसुल माल पर किया जाता है। यह शिरकत मुफावजा का अक़्द मालूम रासुल माल पर किया जाता है, यानी अक़्दे मुफावजा के अंदर रासुल माल जो है यानी जो असल सरमाया है वो मालूम होना चाहिए। जैसे एक की तरफ से 20 दिरहम है तो दूसरे की तरफ से भी 20 दिरहम हो, तो अब देखो रासुल माल मालूम है, रासुल माल मालूम है, असल सरमाया जो है 20 दिरहम एक की तरफ से हैं और 20 दिरहम दूसरे की तरफ से हैं, तो अगर सामान या मकीलात और मौजूनात हो दोनों की तरफ से और एक ही जिंस हो तो इस सूरत में भी ये रासुल माल मालूम है। एक की तरफ से मसलन अगर 100 दिरहम के बर्तन हैं तो दूसरे की तरफ से भी मसलन 100 दिरहम के बर्तन हैं, तो देखो यहां पर भी रासुल माल मालूम है। तवज्जो है, जैसे दिरहम और दीनार पर आकदे शिरकत जायज है क्योंकि वहां रासुल माल मालूम होता है कि एक के 20 दिरहम हैं तो दूसरे के भी 20 दिरहम हैं, तो जब अगर दोनों की तरफ से एक ही जिंस का सामान या मकीलात या मौजूनात हो तो इस सूरत में भी रासुल माल मालूम है। एक की तरफ से 100 मन गंदुम है तो दूसरे की तरफ से भी मसलन 100 मन गंदुम है, तो यह रासुल माल मालूम है। और जब रासुल माल मालूम है तो यह सामान या मकीलात और मौजूनात जो हैं यह भी नकदियों की तरह यानी दिरहम और दीनार जैसे हो गए। दिरहम और दीनार पर आकदे मुफावजा क्यों जायज है? ताकि रासुल माल मालूम हो, पता चले किसका कितना सरमाया है। तो जब दोनों की तरफ से सामान है या मकीलात और मौजूनात हैं लेकिन जिंस एक है तब भी रासुल माल मालूम है, लिहाजा इस सूरत में भी आकदे मुफावजा जायज है क्योंकि इस सामान या मकीलात और मौजूनात की मुशाबहत आ गई नकदियों के साथ। किस चीज में? रासुल माल के मालूम होने में, कि दोनों में रासुल माल मालूम है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वकाल मालिक रहमहुल्लाह ताला यजूज़ बिल उरूज वल मकील वल मौज़ूनी, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक आकदे मुफावजा जायज है सामान के साथ भी और मकीलात और मौजूनात के साथ भी। इज़ा कानल जिन्सु वाहिदन, जब जिन्स एक ही हो, लिअन्नहा उक़िदत अला रअसि मालिन मालूमिन, इसलिए क्योंकि शिरकत मुफावजा का आकद किया जाता है मालूम रअसुल माल पर। फअशबह नुकूदा, तो ये जो सामान मकीलात और मौजूनात वगैरह हैं इनमें से हर एक जो है वो नकदियों के मुशाबे हो गया। ये भी नकदी यानी दिरहम और दीनार के मुशाबे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। यहां एक एतराज होता है, एक दो सफे कबल इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौल जिक्र किया था साहिब हिदाया ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पूछा गया अक़्द मुफावजा के बारे में, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह जवाब में फरमाने लगे ला आरिफु मल मुफावजतु, कि मैं तो नहीं जानता कि मुफावजा क्या है। वहां मैंने दो तकरीरें जिक्र की थी कि बाज उलमा फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह मुफावजा से ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं, यह दरअसल किनाया है मुफावजा के फासिद होने से। मालूम हुआ इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक अक़्द मुफावजा फासिद है, जायज ही नहीं है। यह बाज शारखीन ने तकरीर की, जबकि बाज शारखीन फरमाते हैं कि नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह का ला इल्मी का इजहार करना यह मुफावजा के फसाद की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि सवाल करने वाले ने यह जिक्र किया था कि अक़्द मुफावजा के अंदर दोनों शरीकों का माल के अंदर बराबर होना जरूरी है। एक का कुल माल अगर 20 दिरहम है तो दूसरे का कुल माल भी 20 दिरहम होना चाहिए भाई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह इस पर फरमा रहे हैं ला आरिफु मल मुफावजतु, ये मुफावजा जो तुम जिक्र कर रहे हो कि जिसमें दोनों शरीकों का माल बराबर होना चाहिए, ये मुफावजा तो मैं नहीं जानता। ला आरिफु मल मुफावजतु, मैं नहीं जानता ये मुफावजा क्या है जो तुम जिक्र कर रहे हो। तवज्जो है। मालूम हुआ इन शारहीन के मुताबिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक भी मुफावजा जायज है, अलबत्ता दोनों शरीकों में माल के अंदर बराबरी जरूरी नहीं है। चुनांचे बाज की बार मालिकी फुकहा जो हैं वो भी जिक्र फरमाते हैं कि मुफावजा जायज है, अलबत्ता इसमें माल की बराबरी की शर्त नहीं है भाई। तो वो शारहीन जिन्होंने कहा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक मुफावजा जायज ही नहीं है, तो उन पर एतराज होता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक जब अक़्द मुफावजा जायज ही नहीं है तो फिर यहां यह कहने का क्या माना, वकाल मालिक रहमहुल्ला यजूज बिल उरूज वल मकील वल मौजूनी। तो उन शारहीन पर एतराज होता है, तो उनकी तरफ से फिर यह जवाब दिया जा सकता है कि मालूम हुआ इस मुफावजा के सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह से दो रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक मुफावजा जायज नहीं, चुनांचे इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं नहीं जानता मुफावजा क्या है, यानी वो इसके फसाद की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। और दूसरी रिवायत के मुताबिक मालूम हो उनके नजदीक मुफावजा जायज है और उसमें फिर वो सामान मकीलात और मौजूनात के साथ भी इसको जायज करार देते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, कहते हैं बिखिलाफिल मुजारबती लि अन अल कियास यअबाहा लिमा फीहा मिन रिबह मा लम युज़मन फतक्तसिरु अला मौरिदिश शरई। यहां से इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर होने वाले एक एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। भाई आप जानते हैं मुजारबा इसे कहते हैं कि माल एक शख्स का हो और मेहनत दूसरे शख्स की हो और नफा आपस में तकसीम कर लें, इसको कहते हैं अक़्द मुजारबत। मसलन मेरे पास माल मौजूद है लेकिन मुझे तिजारत नहीं आती, और जैद जो है उसको तिजारत आती है लेकिन उसके पास माल मौजूद नहीं है, तो मैं अपना माल जैद के हवाले करता हूं कि आप इसके साथ तिजारत करें और नफा हम आपस में तकसीम करेंगे। तो ये जो जैद के और मेरे दरमियान आकद हुआ इसको कहते हैं अक़्द मुजारबत भाई। और याद रखो ये जो अक़्द मुजारबत है ये खिलाफुल कियास हदीस से साबित है भाई, अहादीस से इसका सबूत मिलता है। तो बिल इजमा तमाम फुकहा के नजदीक ये अक़्द मुजारबत जायज है। और याद रखना हमारे नजदीक ये अक़्द मुजारबत भी अक़्द शिरकत की तरह है, और जैसे अकदे शिरकत जो है हमारे नजदीक सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका से जायज है, इसी तरह मुजारबत भी सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका से जायज है। तवज्जो है, हमारे नजदीक अकदे मुजारबत का वही हुक्म है जो अकदे शिरकत का है, और अकदे शिरकत तो सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका के जरिए जायज है, तो इसी तरह अकदे मुजारबत भी सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका के साथ जायज है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह जो हैं उनके नजदीक अकदे मुजारबा सिर्फ दिरहम और दीनार और फुलूस नाफिका के साथ जायज है। अकदे मुजारबत उनके नजदीक सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका के साथ जायज है, जबकि शिरकत मुफावजा के बारे में अभी बात गुजर गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं यजूज बिल उरूजी वल मकीली वल मौजूनी, कि शिरकत मुफावजा वो सामान और मौजूनात और मकीलात के साथ भी जायज है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर एतराज होता है कि आपने यह मुजारबत और शिरकत में फर्क क्यों किया। मुजारबत आप सिर्फ दिरहम और दनानीर वगैरह के साथ जायज करार देते हैं, और शिरकत आप दिरहम और दीनार वगैरह के साथ साथ आप सामान और मकीलात और मौजूनात के साथ भी जायज करार देते हैं, तो इन दोनों में आपने फर्क क्यों किया। तो उसका जवाब देने लगे हैं साहिबे हिदाया इमाम मालिक रहमतुल्लाह की तरफ से कि ये जो आकदे मुजारबत है यह खिलाफुल कियास हदीस से साबित है। यह आकदे मुजारबत क्या है? यह खिलाफुल कियास हदीस से साबित है। कियास तो यह तकाजा करता है कि मुजारबत जायज ही नहीं होनी चाहिए, वजह यह कि इसके अंदर रिबहु मालम युजमन लाजिम आता है, ऐसी चीज का नफा कि जिसका जमान इंसान पर नहीं आता। तवज्जो है भाई, कुछ सबक कबल एक हदीस गुजरी थी अलगुरमु बिलगुनमी, अलगुरमो बिल गुनमी, के नुकसान जो है वो नफे के बदले में है। यानी अगर एक चीज का नफा एक आदमी को मिल रहा है तो नुकसान भी उसी पर आएगा जी। नुकसान भी उसी पर आएगा। मालूम हुआ जिस चीज का नुकसान आपको पहुंच सकता है उसका नफा भी आपको मिल सकता है, और जिस चीज का नुकसान आपको नहीं पहुंच सकता उसका नफा भी आपको नहीं पहुंच सकता जी। चुनांचे इसीलिए देखें भाई, ये जो कर्ज देते हैं किसी को, एक शख्स दूसरे आदमी को कर्ज देता है कि मसलन ये 100 दिरहम है ये मैं आपको कर्ज के तौर पर दे रहा हूं, तो ये जो कर्ज है ये दूसरे शख्स के जिम्मे में होता है, ये कर्ज उसको हर हाल में अदा करना है। जिसने कर्ज लिया है उसे हर हाल में यह कर्ज अदा करना है। तवज्जो है, मसलन जैद ने एक शख्स को 100 दिरहम दे दिए कर्ज के तौर पर। अब मुझे बताइए वो जो मकरूज है जो ये दिरहम लेकर गया है उसके पास से ये दिरहम चोरी हो गए तो क्या फिर भी उसको कर्ज वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? उसको फिर भी ये कर्ज वापस करना पड़ेगा। वो शख्स जिसने बतौर कर्ज के दिरहम लिए हैं उसके पास से ये कर्ज चोरी ही क्यों ना हो जाए, फिर भी उसको 100 दिरहम वापस करने पड़ेंगे। मालूम हुआ ये जो कर्ज वाले 100 दिरहम चोरी हो गए इनका नुकसान उस मकरूज को हुआ है, वो कर्ज देने वाले को कोई नुकसान नहीं, उसका माल अभी भी महफूज है, उसने 100 दिरहम ही वसूल करने हैं। मालूम हुआ कर्ज का नुकसान कर्ज देने वाले को नहीं पहुंचता। जब नुकसान नहीं पहुंचता तो इस कर्ज पर नफा लेना भी हराम है, जायज नहीं है। एक आदमी दूसरे को कर्ज देता है ये लो 100 दिरहम ले लो, और 2 महीने बाद आपने मुझे 110 दिरहम वापस करने हैं, भाई देखो ऊपर 10 दिरहम जायद बता रहा है, तो ये तो नफा ले रहा है, और नफा है ऐसे माल का जिसका नुकसान ये नहीं उठाएगा। उस मकरूज के पास ये कर्ज चोरी हो गया तो कर्ज देने वाले का कोई नुकसान नहीं, तो जब नुकसान कर्ज देने वाले का नहीं है तो नफा भी वो नहीं ले सकता। तवज्जो है, अलगुरमो बिलगुनमी, नुकसान किसके बदले में है? नफे के बदले में है। अगर आपको एक चीज का नुकसान पहुंच रहा है तो आपको उसका नफा भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर एक चीज का नुकसान आपको नहीं पहुंच रहा तो आप उसका नफे के भी मुस्तहिक नहीं है। भाई यहां तक जाब्ता समझ में आ गया? मालूम हुआ कर्ज पर नफा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कर्ज के अंदर कर्ज देने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, तो जब नुकसान का वो जिम्मेदार नहीं तो नफा भी उसका हक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो बात चल रही थी मुजारबत की। मैंने आपको बताया कि मुजारबत जो है खिलाफुल कियास हदीस से साबित है। कियास तो मुजारबत का इनकार करता है, कियास तो यह तकाजा करता है अकद मुजारबत जायज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक शख्स को नफा मिल रहा है बगैर नुकसान के
जी।
एक शख्स को नफा मिल रहा है बगैर नुकसान के, वो किस तरह, मसलन देखो मैंने जैद से अकद मुजारबत कर लिया तो माल मेरा है और तिजारत जैद करेगा और नफा हम दोनों आपस में तकसीम करेंगे, तो मैंने अपना माल जैद को दे दिया अकद मुजारबत के बाद, याद रखो ये जो मुजारबत का माल मैंने उस मुजारिब को दिया है ये माल उसके पास बतौर अमानत के है, ये माल उसके पास बतौर अमानत के है, लिहाजा जैद से अगर कोई ये माल चोरी करके ले गया तो जैद का कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ, वो जो रब्बुल माल है वो जो माल वाला है उसी का नुकसान है, मुजारिब का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मुजारिब के पास ये माल बतौर अमानत के है और आप जानते हैं अमानत के अंदर अगर कोई ज्यादती न की जाए तो उसका जमान नहीं आता, हां अगर कोई अमानत के अंदर ज्यादती करता है तो फिर उस पर जमान आता है। तो ये जो माल होता है मुजारिब के पास ये अमानत के हुक्म में है, ये उसके पास से चोरी हो जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं, ये रबुल माल का यानी माल वाले ही का नुकसान है। और ये भी याद रखें मैंने माल जैद को दे दिया, जैद इस माल के जरिए तिजारत कर रहा है तो तिजारत के अंदर जितना भी नुकसान होगा वो सारा मेरा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि माल तो सारा मेरा है, जैद पर कोई नुकसान नहीं है। तवज्जो है, तो कियास तो ये तकाजा कर रहा है कि ये जो तिजारत के अंदर माल लगा हुआ है इसका नुकसान मुजारिब यानी जैद को नहीं पहुंच रहा तो नफे का मुस्तहिक भी जैद को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलगुरमो बिलगुनमी नुकसान किसके बदले है, नफे के बदले है। तो लिहाजा जब जैद को इस माल मुजारबत का नुकसान नहीं तो नफा भी उसको नहीं मिलना चाहिए। मालूम हुआ ये जो मुजारबत जायज है ये खिलाफुल कियास है, क्योंकि इसके अंदर क्या लाजिम आता है, रिबहो मालम युजमन, रिबहो मालम युजमन यानी एक गैर मजमून चीज का नफा, रिबहो मालम युजमन, मालम युजमन का क्या तर्जमा करें, गैर मजमून चीज, गैर मजमून चीज, नफा मजमून चीज का आता है जिसका आप पर जमान भी आता हो, गैर मजमून चीज का नफा आपके लिए दुरुस्त नहीं। तो यहां पर भी माल मेरा था, मेहनत जैद कर रहा है और नफा हम दोनों आपस में तकसीम कर रहे हैं तो जैद को नफा मिल रहा है हालांकि जैद पर जमान नहीं आ रहा, मुजारिब पर जमान नहीं आ रहा लेकिन उसे नफा मिल रहा है। तो ये तो रिबहु मालम युजमन हुआ भाई, एक गैर मजमून चीज का नफा मिल रहा है जैद को, तो कियास तो ये तकाजा करता है ये जायज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन खिलाफुल कियास ये मुजारबत अहादीस से साबित है कि ये आकद जायज है भाई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर एतराज होता था कि अकद शिरकत और अकद मुजारबत दोनों का हुक्म एक होना चाहिए, लेकिन आपके नजदीक अकद मुजारबत तो सिर्फ दिरहम और दीनार वगैरह के साथ जायज है जबकि अकद शिरकत दिरहम और दीनार वगैरह के अलावा सामान और मकीलात और मौजूनात के साथ भी जायज है, तो आपने इन दोनों में यह फर्क क्यों किया? तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया इमाम मालिक रहमतुल्लाह की तरफ से कि यह जो मुजारबत है यह खिलाफुल कियास हदीस से साबित है। खिलाफुल कियास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिबहु मालम युजमन लाजिम आता है यानी गैर मजमून चीज का नफा इसमें लाजिम आता है, तो कियास तो इसको रद्द करता है लेकिन खिलाफुल कियास ये हदीस से साबित है और जो चीज खिलाफुल कियास नस से साबित हो वो अपने मौरिद पर बंद रहती है, वो अपने मौरिद पर बंद रहती है। लिहाजा ये मुजारबत का जो जवाज जिक्र हुआ है वो सिर्फ दिरहम और दीनार वगैरह में जिक्र है, तो मुजारबत सिर्फ दिरहम और दीनार वगैरह में ही जायज होगी, सामान और मकीलात और मौजूनात को इन पर कयास करते हुए उनमें मुजारबत को जायज करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये मुजारबत खुद खिलाफुल कयास है, तो इस पर और चीजों को कयास नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं बेखिलाफिल मुजारबती, बखिलाफ मुजारबत के, लिअन्नल कियास याबाहा, इसलिए क्योंकि कयास जो है मुजारबत का इनकार करता है, लिमा फीहा मिन रिबह मा लम युजमन, इस वजह से कि मुजारबत के अंदर जो है एक गैर मजमून चीज का नफा लाजिम आता है فَتَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ, लिहाजा ये मुजारबत बंद रहेगी शरीयत के वारिद होने की जगह में, और शरीयत तो मुजारबत के बारे में वारिद हुई है दिरहम और दीनार में, तो सिर्फ दिरहम और दीनार में ही मुजारबत जायज होगी और चीजों में जायज नहीं। और यही हुक्म है फुलूस नाफिका का भी, उनका हुक्म भी किसकी तरह है दिरहम और दीनार वाला, तो सिर्फ इन्हीं के अंदर यह मुजारबत जायज है और सामान और मकीलात और मौजूनात में मुजारबत जायज नहीं है। भाई आगे देखिए, वलाना, अब हमारी दलील आ गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि शिरकत मुफावजा सामान और मकीलात और मौजूनात के साथ भी जायज है। हम कहते हैं नहीं, शिरकत मुफावजा सिर्फ दिरहम और दीनार और फुलूस नाफिका में तो जायज है, सामान और मकीलात और मौजूनात में जायज नहीं। अब उसकी दलील जिक्र करेंगे। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु युअद्दी इला रिबह मा लम युज़मन, कि ये अक़्द शिरकत पहुंचा देगा रिबह मा लम युज़मन तक। अगर हम ये अक़्द शिरकत कर लें सामान पर या मकीलात और मौजूनात पर, तो ये कहां तक पहुंचाएगा? रिबहु मालम युज़मन तक। और अभी आपने पढ़ा रिबहु मालम युज़मन, ये तो जायज ही नहीं है जी। नफा तो सिर्फ उसी चीज का जायज है कि जिसका जमान भी आप पर आए, और जिस चीज का जमान आप पर नहीं आता उसका नफा भी आपके लिए जायज नहीं। तो हमारे नजदीक अगर सामान या मकीलात और मौजूनात पर अक़्द शिरकत जायज हो जाए तो यह कहां तक पहुंचा देगा? रिबहो मालम युज़मन तक पहुंचा देगा, और वो तो जायज नहीं है। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु युअद्दी इला रिबह मालम युज़मन, कि ये अक़्द शिरकत जो सामान वगैरह पर किया जाए ये पहुंचा देगा रिबह मालम युज़मन तक, और वो तो जायज नहीं है। लिअन्नहु इदा बा कुल वाहिद मिन्हुमा रअस मालिही, किस तरह रिबह मालम युज़मन लाजिम आएगा वह बयान करने लगे हैं। आप यही समझ लीजिए, मसलन भाई मेरे पास भी 100 दिरहम के बर्तन हैं, आपके पास भी 100 दिरहम के बर्तन हैं। अब हम दोनों आपस में अक़्द शिरकत कर लेते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक। हमने अक़्द शिरकत कर लिया, अब मैंने अपना सामान बेचा, मसलन मेरे बर्तन थे 100 दिरहम के और मैंने बेचा, तो वसूल भी 100 दिरहम ही हुए, जो उनकी कीमत बनती थी वही वसूल हुए। लेकिन जैद ने जब वही अपने 100 दिरहम वाले बर्तन बेचे, उसको कोई अच्छा गाहक मिल गया, कोई अच्छा मुश्तरी मिल गया, वो उसने 110 दिरहम में बेच दिए जी। वो उसने 110 दिरहम में बेच दिए। जब 110 दिरहम में बेचे हैं तो 100 दिरहम तो वो सामान की कीमत थी और बाकी 10 दिरहम नफा आया है, और हम दोनों ने अक़्द शिरकत किया हुआ है, तो उस 10 दिरहम में से 5 दिरहम वो मुझे देने पड़ेंगे। तो मुझे नफा मिला, और किस चीज का नफा मिला है? एक गैर मजमून चीज का। अगर वो बर्तन जैद के पास हलाक हो जाते तो जैद का नुकसान होना था, मेरा नुकसान तो नहीं था। तो देखो मुझे नफा मिल रहा है उन बर्तनों का जिनका जमान मेरे ऊपर नहीं आ रहा भाई, तो क्या लाजिम आया? रिबहो मालम युज़मन लाजिम आया। तो कहते हैं लिअन्नहु इदा बा कुल वाहिद मिन्हुमा रअस मालिही, इसलिए क्योंकि जब दोनों शरीकों में से हर एक ने अपने रासुल माल को फरोख्त कर दिया, व तफाज़ला समनानी, और दोनों समन जो है उनमें कमी बेशी हुई। तफाजुल का माना है एक चीज का दूसरी पर जायद होना, जब एक चीज जायद होगी तो दूसरी कम हो जाएगी, तो तर्जमा क्या कर लेंगे? कमी बेशी। तो कहते हैं जब दोनों ने में से हर एक ने अपने रासुल माल को बेचा, मेरा रासुल माल क्या था? 100 दिरहम के बर्तन। जैद का रासुल माल भी क्या है? 100 दिरहम के बर्तन है। तो हम दोनों ने अपने रासुल माल को बेचा, व तफाज़ला समनानी, और वो दो समन जो हैं उनमें कमी बेशी हुई। मसलन एक का उसी कीमत पर फरोख्त हुआ और दूसरे के अंदर नफा भी आ गया। तो कहते हैं फमा यस्तहिक्कुहु अहदुहु मा मिना ज़ियादति फी माली साहिबिही, तो दोनों में से एक जो है अपने साथी के माल के अंदर जिस ज्यादती का मुस्तहिक हो गया जी। मेरे बर्तन तो कितने के फरोख्त हुए? 100 दिरहम के। लेकिन जैद के बर्तन कितने के फरोख्त हुए? 110 दिरहम के। तो 100 दिरहम तो बर्तनों की कीमत थी, 10 दिरहम नफा आ गया। तो देखो ये जो मेरे साथी के माल के अंदर जो ज्यादती आ गई, जो नफा आ गया, उसका मैं मुस्तहिक बन गया, तो ये क्या है? रिबह मालम युजमन है, यह माना है फमा यस्तहिकुहु अहदुहुमा मिना ज़ियादती फी माली साहिबिही। भाई ये मीना ज़ियादती फी माली साहिबिही ये बयान है फमा यस्तहिकुहु का
जी।
और मैंने आपको बतलाया था कि बयान को मुबय्यन की जगह ले आए, मां की जगह इस मीना ज़ियादती फी माली साहिबिही इसको ले आए, तर्जमा बेहतरीन हो जाएगा। तो कहते हैं फमा यस्तहिकुहु अहदुहुमा मीना ज़ियादती फी माली साहिबिही, तो इन दोनों में से एक जो उस ज्यादती का मुस्तहिक हो रहा है जो उसके साथी के माल में आई, ये जो है रिबह मालम यमलिक व मालम यजमीन, तो ये नफा है उस चीज का जिसका ये मालिक नहीं है और जिसका ये जामिन नहीं है। फमा यस्तहिकुहु अहदुहुमा, तो वो ज्यादती जिसका एक मुस्तहिक हो गया रिबह मालम यमलिक व मालम यजमीन, ये नफा है उस चीज का जिसका वो मालिक भी नहीं था और जिसका वो जामिन भी नहीं था। भाई बिखिलाफी दराहिमी व दनानीरी, बखिलाफ दिरहमों और दीनारों के। भाई सूरत ये, मैंने और जैद ने अकदे शिरकत कर लिया, मेरे पास भी 20 दिरहम, जैद के पास भी 20 दिरहम, तवज्जो है, मेरे पास 20 दिरहम है, जैद के पास भी 20 दिरहम है, हम दोनों ने अक्दे शिरकत कर लिया और मैंने इस 20 दिरहम की कोई चीज खरीदी और फिर बेच दी तो 10 दिरहम का मुझे नफा हो गया, तो अब यह नफा मुझे जैद को भी निसफ देना पड़ेगा। तवज्जो है, तो इश्काल होता है यह नफा तो मैंने अपने दिरहमों से कमाया है, जैद इन दिरहमों का मालिक भी नहीं और जैद इन दिरहमों का जामिन भी नहीं, तो फिर कैसे जैद जो है इस नफे के अंदर शरीक हो सकता है? तो वही अब साहिबे हिदाया बयान फरमाएंगे कि भाई ये दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते
जी।
मैंने किसी से गाड़ी खरीदी है अकदे शिरकत के बाद, तो जरूरी नहीं है मैं यही दिरहम अदा करूं जो मेरे पास हैं, बल्कि इस गाड़ी के समन देना मेरे जिम्मे है और फिर उसके निसफ के अंदर मैं जैद पर रुजू करूंगा
जी।
मैं जैद पर रुजू करूंगा, मालूम हुआ निसफे जमान जैद पर आ रहा है उस चीज का
जी।
मालूम हुआ दिरहम और दीनार के अंदर जो नफा आता है वो रिबह मा लम युजमन नहीं है बल्कि रिबह मा युजमन है, उसमें दूसरे पर जमान आता है। मैं बेशक अपने दिरहमों से चीज खरीद रहा हूं लेकिन फिर मैं निसफ समन के अंदर जैद पर रुजू करूंगा कि निसफ समन अब आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने और मैंने अक़्दे शिरकत किया हुआ है। बात समझ में आ गई, शायद अभी भी आप पर बात पूरी तरह वाज़ह न हुई हो कि दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते। देखिए एक दो और मिसालें देख लीजिए, इंशाल्लाह फिर बात पूरी तरह वाज़ह हो जाएगी। भाई याद रखो ये जो और सामान है या मकीलात और मौजूनात हैं वो तायीन से मुतायन हो जाते हैं। मैं आपके साथ बया करता हूं और आपसे कोई सामान खरीदता हूं या मैं आपसे मकीलात और मौजूनात में से कोई चीज खरीदता हूं तो वो तायीन से मुतायन हो जाएंगे। मसलन आपके पास कुछ बर्तन मौजूद हैं, मैंने उन बर्तनों की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो बर्तन हैं ये मैंने आपसे इतने समन के बदले खरीद लिए और आपने कहा मुझे कबूल है, तो याद रखो ईजाब और कबूल होते ही बै मुनाकिद हो गई और यह सामान जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था जिनकी हमने आपस में बै की है यह मुतायन हो गया बतौर मबीए के। अब आपको यही सामान मेरे हवाले करना पड़ेगा क्योंकि यह सामान मबीहा है भाई और सामान तायीन से मुतायन हो जाता है, और अगर यह सामान मुश्तरी के हवाले करने से पहले ही बाय के पास ही हलाक हो गया तो याद रखो बै ही खत्म हो जाएगी क्योंकि मबीआ ही ना रहा तो बै भी बाकी नहीं रहेगी क्योंकि बै तो इसी मबीआ की हुई थी, जब मबीआ का वजूद नहीं तो बै का वजूद भी बाकी ना रहा। और इसी तरह याद रखो ये जो मकीलात और मौजूनात हैं ये भी तायीन से मुतायन हो जाते हैं। मसलन आपके पास 100 मन गंदुम मौजूद है, मैंने उस गंदुम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो आपकी 100 मन गंदुम है ये मैंने आपसे इतने समन के बदले में खरीद ली, आपने कहा मुझे कबूल है, तो याद रखो ये गंदुम जिसकी तरफ मैंने इशारा किया ये भी अब तायीन से मुतायन हो गई, यही मबीआ है, अब आपको यही गंदुम मेरे हवाले करना पड़ेगी, अगर ये गंदुम आपके पास हलाक हो गई तो याद रखो बै ही खत्म हो जाएगी क्योंकि मबीआ ही बाकी ना रहा। जबकि इसके मुकाबले में दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते। मसलन मैं आपसे एक बया करने लगा, मैंने 100 दिरहम सामने रखे और उनकी तरफ बाकायदा इशारा करके कहा कि ये जो दिरहम हैं इनके बदले में मैंने आपकी गाड़ी खरीद ली और आपने कबूल कर लिया, हम दोनों के दरमियान बया मुनाकिद हो गई। लेकिन याद रखो ये जो 100 दिरहम हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया था, ये इशारे के बावजूद तायीन के बावजूद ये मुतायन नहीं हुए, लिहाजा इस बया के अंदर यही दिरहम आपके हवाले करना मुझ पर लाजिम नहीं है, बल्कि इसके बजाय मैं इस जैसे और 100 दिरहम ले आता हूं और वो आपके हवाले करता हूं तो भी बाय इनकार नहीं कर सकता, बाय एतराज नहीं कर सकता कि ये जो दिरहम सामने पड़े हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया था आपको यही दिरहम देने पड़ेंगे, मैं और दिरहम नहीं लूंगा। नहीं भाई, दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते। सूरत समझ में आ रही है? या दूसरी सूरत देख लें, मैंने 100 दिरहम सामने रखे और उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये जो दिरहम है इनके बदले मैंने आपसे गाड़ी खरीद ली और आपने कबूल कर लिया, हम दोनों के दरमियान बया मुनाकिद हो गई, और फिर वो दिरहम अभी मैंने आपके हवाले नहीं किए थे कि ये दिरहम जो सामने मौजूद थे ये नीचे दरिया में गिरे और डूब गए। मबिया हलाक हो तो बया बातिल हो जाती है, लेकिन ये दिरहम और दीनार ये तो तायीन से भी मुतायन नहीं होते, लिहाजा ये अगरचे हलाक हो गए हैं लेकिन बया बातिल नहीं है, बल्कि अब मुश्तरी के जिम्मे है कि वो इस जैसे और दिरहम अदा करे। तो अगर ये दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन होते फिर तो ये दिरहम जाया होने पर बया को फासिद होना चाहिए था, लेकिन बया फिर भी फासिद नहीं। बात समझ में आ गई? दिरहम और दनानीर की तरफ इशारा भी कर दिया जाए फिर भी वो मुतायन नहीं है, वही दिरहम बाय को देना ये जरूरी नहीं है, बल्कि उन जैसे और दिरहम भी अदा किए जा सकते हैं। तो मालूम हुआ दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते, जबकि सामान और मकीलात और मौजूनात जो हैं वो तायीन से मुतायन हो जाते हैं। जब मुतायन सामान की या मुतायन मकीलात और मौजूनात की बया की है तो वही मबिया है, वही मुश्तरी के हवाले करने पड़ेंगे। अगर वो मुतायन मबिया यानी वो सामान या मकीलात और मौजूनात हलाक हो गए तो बया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मबिया का वजूद ना रहा तो बया का वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं बिखिलाफ दराहिमी व दनानीरी, बखिलाफ दिरहम और दीनारों के, लिअन्न समन मा यश्तरी ही फी जिम्मती ही, इसलिए क्योंकि समन उस चीज के जिसको दोनों में से हर एक खरीदता है, फी जिम्मती ही उसके जिम्मे में होते हैं। भाई मेरे पास 20 दिरहम है, जैद के पास भी 20 दिरहम है, मैंने 20 दिरहम की कोई चीज खरीद ली तो अब जरूरी नहीं है कि मैं यही 20 दिरहम उसके हवाले करूं, बल्कि मेरे जिम्मे हैं 20 दिरहम मुझे देने पड़ेंगे, और उन 20 में से भी 10 मैं किससे ले सकता हूं, जैद से ले सकता हूं कि मुझे अब 10 दिरहम दे दें। तो कहते हैं लिअन न समन मायश्तरी ही फी जिम्मती ही, इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक जो है जिस चीज को भी खरीदता है उसके समन उसके जिम्मे में होते हैं। इस ही अल्लाह यतायनु, इसलिए क्योंकि दिरहम और दीनार मुतायन नहीं होते। फकान रिबह मा जमीना, तो ये नफा है उस चीज का जो मजमून है। फकान रिबह, काना के अंदर हुआ जमीर राजह है रिबह को, इबारत गोए यूं है फकान रिबह रिबह मा जमीना, तो ये नफा जो है ये मजमून चीज का नफा है, गैर मजमून चीज का नफा नहीं है भाई। तो कहते हैं फकान रिबह मा जमीना, तो यह नफा जो है एक मजमून चीज का नफा है। वली अन्न अव्वल तसर्रुफ फिल उरूज अल बैउ व फिन नुकूद शिराउ, यहां से दूसरी दलील जिक्र फरमा रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह, फरमाते हैं कि सामान वगैरह में भी शिरकत मुफावजा जायज है। हम कहते हैं नहीं, सामान में शिरकत मुफावजा जायज नहीं, वरना तो रिबह मा लम युज़मन लाजिम आएगा। और जबकि दिरहम और दीनार जो हैं उसके अंदर जो नफा होता है वो रिबह मा युज़मन होता है, क्योंकि दूसरे शरीक पर निसफ समन के अंदर रुजू किया जाता है, वहां मालूम उस पर जमान आ रहा है, जब जमान उस पर आ रहा है तो उसके लिए नफा भी जायज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं कि भाई एक है दिरहम और दीनार में शिरकत और एक है सामान के अंदर शिरकत, दोनों में फर्क है। दिरहम और दीनार के अंदर जब शिरकत करेंगे तो पहला अमल क्या करेंगे, कोई चीज खरीदेंगे उस दिरहम और दीनार के जरिए और फिर उसको बेचेंगे।
जी।
भाई आपके पास भी 20 दिरहम है, एक और आदमी के पास भी 20 दिरहम है, आप दोनों आपस में अकदे शिरकत कर लेते हैं। अब आप कारोबार शुरू करने लगे हैं तो पहला अमल क्या करेंगे, इस दिरहम और दीनार के जरिए किसी चीज को खरीदेंगे। तो मालूम हुआ जब नकदियों पर शिरकत की जाती है तो पहला अमल खरीदारी होता है और खरीदारी के अंदर शिरकत जायज है। आप अपने माल से एक गाड़ी खरीदते हैं उसमें आप और जैद शरीक हों, यह जायज है। आप खरीदते किसके जरिए हैं, अपने माल के जरिए, लेकिन जैद भी आपके साथ शरीक हो जाए, यह मुमकिन है, जायज है। किस तरह जायज है, मसलन जैद ने आपसे कहा था कि आप एक गाड़ी खरीद लें, आप अपने पैसे लगा दें, बाद में मुझसे आधे पैसे ले लेना, आपकी मेरी मुश्तरका गाड़ी हो जाएगी। तो अब आप अपने माल से गाड़ी खरीदते हैं लेकिन उसमें जैद भी क्या हो गया आपके साथ शरीक। तो लिहाजा जब दिरहम और दीनार के अंदर शिरकत की जाती है तो पहला अमल उसके अंदर खरीदारी होता है और खरीदारी के अंदर मबीए के अंदर दूसरा आदमी भी उस खरीदार के साथ शरीक हो सकता है। लेकिन अगर शिरकत सामान पर है, आपके पास भी 100 दिरहम के बर्तन हैं और दूसरे आदमी के पास भी 100 दिरहम के बर्तन हैं और आपने आपस में अकदे शिरकत कर लिया, तो अब पहला अमल क्या करना पड़ेगा, सामान को बेचना पड़ेगा, सामान को बेचना पड़ेगा। और याद रखो, आप अपना सामान बेचें और उसके समन में आपके साथ कोई और भी शरीक हो जाए, यह जायज नहीं। तवज्जो है, आप अपने माल से कोई चीज खरीदें तो उसमें तो कोई दूसरा आपके साथ शरीक हो सकता है, उसने आपको वकील बनाया हो, लेकिन आप अपने माल को बेचें और उसके समन में कोई और भी आपके साथ शरीक हो जाए, यह नहीं हो सकता। आप अपनी गाड़ी बेचते हैं और जैद कहता है कि आप अपनी गाड़ी बेच दें और उसके समन के अंदर मैं भी आपके साथ शरीक होऊंगा। नहीं भाई, गाड़ी आपकी है तो समन भी आप ही के हैं। हासिल कलाम यह कि अपने माल से कोई चीज खरीदी जाए उसमें गैर शरीक हो सकता है, लेकिन अपने माल को बेचा जाए तो समन में गैर शरीक नहीं हो सकता। लिहाजा सामान और मकीलात और मौजूनात में अक्दे शिरकत जायज नहीं, क्योंकि इस सूरत में सामान के समन में दूसरे को शरीक करना लाजिम आएगा और यह जायज नहीं है। तो कहते हैं वली अन्ना अव्वला तसर्रुफ़ फिल उरूज़िल बैउ, और इसलिए क्योंकि सामान के अंदर जो पहला तसर्रुफ होता है वो बैउ है, वफिन नुकूद शिराउ, और नकदियों के अंदर पहला तसर्रुफ जो है वो खरीदारी होती है, व बैउ अहदिहिमा मालहू, और दोनों शरीकों में से एक का अपने माल को बेचना, अला अन यकून अल आखरु शरीकन फी समनी ही, इस शर्त पर कि दूसरा भी उसके साथ समन में शरीक होगा, ला यजूज़ु, ये जायज नहीं है। वह शिरा उ अहदिहिमा शय अंबी माली ही, और दोनों शरीकों में से एक का किसी चीज को अपने माल से खरीदना, अला अन यकून अल मबी उ बैनहू व बैन गैरी ही जायजुन, इस शर्त पर कि मबिया उसके और गैर के दरमियान मुश्तरका होगा, जायजुन, ये जायज है। सूरत अच्छी तरह समझ में आ गई। लिहाजा सामान और मकीलात और मौजूनात में अक्दे शिरकत जायज नहीं, क्योंकि इस सूरत में सामान के समन में दूसरे को शरीक करना लाजिम आएगा और यह जायज नहीं है। आगे देखिए भाई, व अमल फुलूसुन नाफिकतु तरूजु रवाजल असमान, यहां से साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि जो फुलूस नाफिका हैं इनके साथ भी अकदे शिरकत जायज है या जायज नहीं, इनके साथ भी अकदे मुजारबत जायज है या जायज नहीं। इसमें इमाम मोहम्मद रहमल्ला का और शेखैन रहमहुल्ला का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि ये जो फुलूस नाफिका हैं, ये जो बाजार में समन चलते हैं जिनके साथ लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, जैसे रुपए पैसे वगैरह, तो इनका हुक्म भी दिरहम और दीनार वाला है इमाम मोहम्मद रहमल्ला के नजदीक। जैसे दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते, इसी तरह ये फुलूस नाफिका भी तायीन से मुतायन नहीं होते, लिहाजा इनका हुक्म भी दिरहम और दीनार वाला है। और जैसे दिरहम और दीनार के साथ अक्दे शिरकत और अक्दे मुजारबत जायज है, तो फुलूस नाफिका के साथ भी अक्दे शिरकत और अक्दे मुजारबत जायज है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। भाई यहां एक कीमती बात याद रखना, याद रखो ये जो सोना और चांदी है इनको अल्लाह ने पैदा ही बतौर समन के फरमाया है, इनको पैदा ही तिजारत के लिए किया गया है ताकि इसके जरिए लोग आपस में तिजारत कर सकें, आपस में बेउशीरा कर सकें। तो ये जो सोना और चांदी हैं ये खिलकतन समन है, यानी इनको अल्लाह ने पैदा ही बतौर समन के फरमाया है, चुनांचे इसीलिए सोने से दीनार बनाए जाते हैं और चांदी से दिरहम बनाए जाते हैं। तो ये दिरहम और दीनार ये समन है, ये इसी सोने और चांदी से बने हैं। मालूम हुआ ये दिरहम और दीनार, या यूं कहें ये जो सोना और चांदी, ये खिलकतन समन है। और दूसरे समन जो बाजार में किसी मुल्क की जो करेंसी होती है, याद रखो वो समन इस्तिलाही है, यानी जिसको समन करार दे दिया जाता है आपस में इत्तेफाक करते हुए। जैसे हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है तो उस मुल्क के अंदर वही करेंसी चलती है और उसके जरिए खरीदो फरोख्त की जाती है, यानी उस करेंसी को समन मुकर्रर कर लिया जाता है, उस करेंसी को समन मुकरर कर लिया जाता है। खिलकत के एतबार से वो समन नहीं है लेकिन उन्होंने इसको समन मुकरर कर दिया है, तो इसको कहते हैं समन इस्तिलाही। तो ये जो दिरहम और दीनार हैं ये समन है खिलकतन, और ये जो करेंसी और सिक्के वगैरह हैं याद रखो ये समन इस्तिलाही हैं भाई, समन इस्तिलाही हैं। और फिर यहां अकदे सर्फ को भी समझ लें, याद रखो अकदे सर्फ इसे कहते हैं कि दो आदमियों के दरमियान बै होती है और दोनों तरफ इवज जो है वो समन की जिंस से होते हैं। मसलन आप दिरहम बेचते हैं और उसके बदले में दीनार खरीदते हैं, तो दिरहम ये भी समन की कबील से और दीनार ये भी समन की कबील से, तो दोनों तरफ से जब इवाज़ैन जो हैं वो समन की कबील से हों तो इसको अकदे सर्फ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अकदे सर्फ, भाई सौद के साथ है। और याद रखो अकदे सर्फ के अंदर इवाज़ैन पर उसी मजलिस में कब्जा शर्त है। आप दिरहम बेचकर दीनार खरीदना चाहते हैं तो उसी मजलिस के अंदर दोनों अकद करने वाले इवज़ैन पर कब्जा करेंगे
जी।
इसमें उधार जायज नहीं, आप दीनार आज दे रहे हैं और वो दिरहम कल देगा तो याद रखो ये अकद सर्फ जायज नहीं है
जी।
जिस मजलिस में बै हुई है, जिस मजलिस में इजाब और कबूल हुआ है, उसी मजलिस के अंदर इवज़ैन पर कब्जा शर्त है। और नीज अकदे सर्फ का एक और जाब्ता याद रखना, अगर दोनों तरफ से जिन से एक है, मसलन आप दिरहम देकर दिरहम ही लेना चाहते हैं तो उस सूरत में फिर बराबरी भी शर्त है। आप 10 दिरहम बेच रहे हैं तो बदले में 10 दिरहम ही खरीद सकते हैं, यहां बराबरी जरूरी है, बराबरी जरूरी है। चाहे आपके दिरहम आला किस्म के हैं और दूसरे शख्स के दिरहम अदना किस्म के हैं, फिर भी जब जिन से एक है तो बराबरी शर्त है। अगर कमी बेशी करेंगे तो सूद लाजिम आएगा, रिबा लाजिम आएगा और वो हराम है, जायज नहीं है। तो अकदे सर्फ में दोनों तरफ से जो इवज होते हैं वो समन की कबील से होते हैं और वहां पर उधार किसी भी सूरत में जायज नहीं, और कमी बेशी सिर्फ उस सूरत में जायज है जब दोनों तरफ से अलग अलग जींस हो। बात समझ में आ गई? तो बात चल रही थी कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो फुलूसे नाफिका हैं इनका भी वही हुक्म है जो दिरहम और दीनार का है, और दिरहम और दीनार जो हैं जैसे उनके अंदर आपस में बै की जाए, दोनों तरफ से समन की जिंस हो और एक ही जिंस हो तो फिर बराबरी शर्त है। इसी तरह फुलूसे नाफिका जो हैं इनका भी यही हुक्म है, तो लिहाजा एक सिक्के की बै करना दो सिक्कों के बदले जब जिंस एक ही हो ये जायज नहीं है। जैसे एक दिरहम को बेचना दो दिरहमों के बदले यह जायज नहीं है, या इसी तरह एक रुपया देकर दो रुपए खरीदना यह जायज नहीं क्योंकि जिन्स एक है। लेकिन अगर जिन्स अलग है फिर कमी बेशी जायज है। मसलन आपके पास है डॉलर और दूसरे शख्स के पास है पाकिस्तानी रुपए, तो अब आप एक डॉलर के बदले मसलन 200 रुपए लेते हैं तो यह जायज है क्योंकि जिन्स अलग है। अलबत्ता उधार यहां भी जायज नहीं, नकद हो भाई, नकद हो। बात समझ में आ गई? हासिल कलाम ये कि अकदे सर्फ में उधार किसी भी सूरत में जायज नहीं और कमी बेशी सिर्फ उस सूरत में जायज है जब दोनों इवज़ैन की जिंस अलग अलग हो। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो फुलूस नाफिका है इनका हुक्म भी दिरहम और दीनार वाला है, लिहाजा इनके अंदर भी जब आपस में बैठ करें तो एक सिक्के के बदले दो सिक्के लेना जायज नहीं, एक रुपए के बदले दो रुपए लेना जायज नहीं है। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये जो फुलूस नाफिका है इनका हुक्म सामान वाला है, इनका हुक्म दिरहम और दीनार वाला नहीं। जब दिरहम और दीनार वाला हुक्म नहीं सामान वाला हुक्म है तो कमी बेशी के साथ बैअ जायज है, यानी एक सिक्का देकर दो सिक्के खरीदना जायज है। अलबत्ता उधार, वो भी फरमाते हैं यहां उधार जायज नहीं है क्योंकि जिंस एक ही है। आपने पढ़ा है भाई रिबा की तफसील, उलमा जिक्र फरमाते हैं अगर जिंस और कदर एक हो, जिंस और कदर एक हो तो फिर कमी बेशी भी जायज नहीं और उधार भी जायज नहीं है। जिंस यानी दोनों तरफ मसलन गंदुम है और कदर यानी गंदुम जो है वो कैली है, हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में उसको बर्तन में माप कर बेचा जाता था, तो दोनों तरफ जब गंदुम है तो फिर इनको इसी तरह माप कर बराबरी के साथ बेचना पड़ेगा भाई। तो मालूम हुआ कि मकीलात और मौजूनात जो हैं इनकी जब बैअ की जाए तो अगर एक ही जिंस हो तो फिर कमी बेशी भी जायज नहीं और उधार भी जायज नहीं। लेकिन अगर जिंस तो एक है लेकिन कदर नहीं है, यानी वो चीज कैली या वजनी नहीं है, तो फिर नकद तो कमी बेशी के साथ जायज है, उधार जायज नहीं। नकद तो कमी बेशी के साथ जायज है, उधार जायज नहीं। चुनांचे शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक सिक्का नकद देकर उसी जैसे दो सिक्के लेना इवज के अंदर बैग के अंदर यह जायज है क्योंकि यह सामान के हुक्म में है। लेकिन जिंस एक ही है, यह भी सिक्का है और वो भी सिक्के हैं, लिहाजा उधार जायज नहीं है भाई। उधार जायज नहीं, कमी बेशी जायज है और उधार जायज नहीं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये दिरहम और दीनार की कबील से हैं ये जो सिक्के हैं, लिहाजा यहां नकद भी बेचें तो कमी बेशी नहीं होनी चाहिए बल्कि बराबरी होनी चाहिए। और नीज वो भी फरमाते हैं ये चूंकि अक़्दे सर्फ की कबील से है लिहाजा यहां उधार भी जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई किताब पर कहते हैं वह अमल फुलूसुन नाफिकतु और बाकी राइज पैसे जो होते हैं तरूजु रवाजल आसमानी वो समन की तरह राइज होते हैं। फुलूस नाफिका किसकी तरह राइज होते हैं? समन की तरह, जैसे समन के जरिए यानी दिरहम और दीनार के जरिए बाजार में खरीद और फरोख्त होती है, इसी तरह ये जो राइज करेंसी होती है इसके जरिए भी बाजार में खरीदो फरोख्त होती है। तो फुलूस नाफिका जो है वो समन की तरह राइज होते हैं भाई। और याद रखना यहां लफ्ज आया तरूजु रवाज अल आसमानी, राजा या रूजू रवाजन भाई, ये रवाज मस्दर है। उर्दू में तो रिवाज रा के कसरा के साथ इस्तेमाल होता है लेकिन अरबी में ये रा के फतहा के साथ है भाई, रवाज भाई। तो कहते हैं वह अमल फुलूसुन नाफिकतु तरूजु रवाजल आसमानी और बाकी फुलूस नाफिका जो होते हैं वो समनों की तरह राइज होते हैं। फउल हिकत बिहा, तो इनको समनों के साथ ही मिलाया जाएगा यानी इनका हुक्म भी वही दिरहम और दीनार वाला होगा। कालू, फुकहा फरमाते हैं हादा कौलू मोहम्मद इन रहमहुल्लाह ताला कि ये इमाम मोहम्मद रहमला का कौल है। लिअन्नहा मुल्हकतुम बिन नुकूद इंदहू, इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक ये जो फुलूस नाफिका हैं ये नकदियों के साथ मुल्हक होते हैं। इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि फुलूस नाफिका का वही हुक्म है जो नकदियों का यानी दिरहम और दीनार का है। तो कहते हैं फुकहा फरमाते हैं हादा कौलु मोहम्मद इन रहिमहुल्लाह के इमाम मोहम्मद रहमला का कौल है। लिअन्नहा मुल्हकतुम बिन नुकूद इंदहू, इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक ये फुलूस नाफिका जो है इनको नकदियों के साथ मिलाया गया है। हत्ता ला ततअय्यनु बितअय्यीनी, यहां तक ये फुलूस नाफिका जो है तायीन से मुतअय्यन नहीं होते, जैसे दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते इसी तरह फुलूस नाफिका भी तायीन से मुतायन नहीं होते इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। और याद रखना यहां आया हत्ता ला ततअय्यनु, यहां पर यह हत्ता नसब नहीं देगा यानी हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं। हत्ता के बाद अन के मुकद्दर होने के लिए आपने पढ़ा है दो शर्तें हैं, एक तो यह कि हत्ता का माबाद मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरा वो हत्ता गाया या सबबियत का फायदा दे, और यहां ये शर्तें पूरी नहीं हैं। अक्सर ये साहिबे हिदाया जो हत्ता लेकर आते हैं वो तफरीअ के लिए लाते हैं, माकबल पर एक बात की तफरीअ करते हैं। जैसे यहां बतलाया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये फुलूस नाफिका जो हैं ये नकदियों के साथ मुलहक हैं, इनका नकदियों वाला हुक्म है। हत्ता ला ततायन भी तायनी, यहां तक ये तायीन से भी मुतायन नहीं होते, यानी जैसे वो नकदियां दिरहम और दीनार जो हैं वो तायीन से मुतायन नहीं होते, ये भी तायीन से मुतायन नहीं होते। तो साहिब हिदाया अक्सर जगह ये हत्ता के जरिए तफरी करते हैं माकबल पर। तो कहते हैं हत्ता लाता तायन भी तायीनी, यहां तक कि ये तायीन से मुतायन नहीं होते। वला यजूजु बैउस्नैन बिवाहिदिन बिआयानिहा, और जायज नहीं है इनमें से दो मुआयन की बै एक के बदले में। अला माउरिफ, उस वजह से जो जान लिया गया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये नकदियों के हुक्म में है। भाई यहां आया बी आयानिहा, याद रखना बी आयानिहा से मुराद यह है कि ये जो दो फुलूस नाफिका की बै की जा रही है एक के बदले में, ये मुतायन हो यानी नकद हो। मुतायन तभी होंगे ना जब सामने मौजूद हैं, तो उस वक्त ये मुतायन है यानी नकद बै हो रही है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं दो फुलूस नाफिका देकर बदले में एक लेना ये जायज नहीं है, जैसे दो दिरहम देकर बदले में एक दिरहम लेना। और नकद की कैद लगाई भी आयानिहा कि मुअय्यन हो यानी नकद हो, क्योंकि उधार तो हमारे तीनों अइमा के नजदीक ही जायज नहीं है। भाई तो कहते हैं वला यजूजु बैउस्नैन बिवाहिदिन बिआयानिहा, यहां तक के जायज नहीं है दो मुअय्यन फुलूस नाफिका की बै एक के बदले में। अला मा उरिफा, उस वजह से जिसको जान लिया गया कि ऊपर हमने बतला दिया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये फुलूस नाफिका ये नकदियों के हुक्म में है यानी दिरहम और दीनार के हुक्म में है। अम्मा इंदा अबी हनीफा तवा अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, यहां तक बात समझ में आ गई। मालूम है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफिका नकदियों के हुक्म में है यानी दिरहम और दीनार के हुक्म में है, और दिरहम और दीनार के साथ तो शिरकत भी जायज और मुजारबत भी जायज, लिहाजा फुलूस नाफिका के साथ भी शिरकत भी जायज और मुजारबत भी जायज है। अब आगे शेखैन रहमहुमल्लाह का मजहब आ रहा है, कहते हैं अम्मा इंदा अबी हनीफा तवा अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह ताला, और बाकी शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक ला यजूजु शिरकत वल मुजारबत बिहा, कि जो फुलूस नाफिका हैं इनके साथ शिरकत और मुजारबत जायज नहीं है। लिअन्ना समनियतहा ततबद्दलु साअतन फसाअतन, इसलिए कि उनके इन फुलूस नाफिका का समन होना वो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। भाई बाज़ औकात एक मुल्क के अंदर एक करंसी चल रही होती है और फिर ऐलान कर दिया जाता है कि फलां तारीख के बाद ये पुरानी करंसी इसके जरिए बैउशिरा जायज नहीं, बल्कि उसके बाद नई करंसी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। तो मालूम हुआ कि वो फुलूस जो पहले चल रहे थे अब वो किसके हुक्म में हो गए, सामान के हुक्म में हो गए। तो शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं ये जो फुलूस नाफिका होते हैं इनकी समनियत बदलती रहती है, कभी इनको बतौर समन के इस्तेमाल किया जाता है और कभी इनकी समनियत खत्म करके इनको सामान करार दे दिया जाता है। भाई तो कहते हैं लिअन्ना समनियतहा, कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो फुलूस नाफिका हैं इनका समन होना, ततबद्दलु साअतन फसाअतन, ये घड़ी घड़ी बदलता रहता है। व तसीरु सिलअन, और ये जो फुलूस नाफिका हैं ये सामान बन जाते हैं। मालूम हुआ फुलूस नाफिका इंतहाअन सामान बन जाते हैं, इंतहाअन सामान बन जाते हैं। तो अगर कोई चीज इब्तिदाअन सामान हो उसके साथ शिरकत और मुजारबत जायज नहीं, तो जो इंतहाअन सामान हो उसके साथ भी शिरकत और मुजारबत जायज नहीं होगी। तवज्जो है भाई, अभी ऊपर आपको बतलाया कि हमारे नजदीक सामान और मकीलात और मौजूनात के अंदर शिरकत और मुजारबत जायज नहीं है। मालूम हुआ इब्तिदाअन सामान और मकीलात और मौजूनात के साथ अक़्दे शिरकत और मुजारबत जायज नहीं, जब इब्तिदाअन इस सामान के साथ शिरकत जायज नहीं तो जो चीज इंतहाअन सामान बन जाए उसके साथ भी अक़्दे शिरकत जायज नहीं होगा। भाई तो ये फुलूस नाफिका इंतहाअन सामान के हुक्म में है, तो जब ये इंतहाअन सामान के हुक्म में है तो इनके साथ शिरकत जायज नहीं होगी। भाई आगे देखिए, कहते हैं वयुरवा अन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह तआला मिस्लु कौली मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह तआला। भाई ऊपर इख्तिलाफ जिक्र हो गया, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफिका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज है, शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफिका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज नहीं। कहते हैं लेकिन एक कौल इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का इसी तरह का नकल किया गया है जैसा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफिका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से भी एक रिवायत के अंदर नकल किया गया है, वो फरमाते हैं कि फुलूस नाफिका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज है। भाई तो कहते हैं वयुरवा अन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला मिस्लु कौली मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल के मिसल रिवायत किया गया है। वल अव्वलु अक्यसु व अजहरु, और पहला कौल ज्यादा कियास के मुताबिक है, व अजहरु और ज्यादा जाहिर है। भाई देखिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के दो कौल आ गए यहां पर, एक कौल ऊपर जिक्र हुआ कि शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफका के अंदर शिरकत और मुजारबत जायज नहीं, और शेखैन रहमहुल्लाह में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह भी दाखिल हैं। तो मालूम है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के एक कौल के मुताबिक फुलूस नाफका से शिरकत और मुजारबत जायज नहीं, और दूसरा कौल जो उनसे नकल किया गया है वह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के मिसल है कि फुलूस नाफका के साथ भी शिरकत और मुजारबत जायज है। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का पहला कौल जो है वह ज्यादा कियास के मुताबिक है और ज्यादा जाहिर है कि इन फुलूस नाफका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज नहीं, यह ज्यादा कियास के मुताबिक है और ज्यादा जाहिर है। भाई क्या माना यह ज्यादा कियास के मुताबिक है? कहते हैं देखो दो फुलूस नाफका को देकर एक लेना, यानी दो सिक्के देकर एक सिक्का खरीदना, या एक रुपया देकर दो रुपए खरीदना ऊपर गुजर गया, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जायज नहीं क्योंकि इनका हुक्म दिरहम और दीनार वाला है, और शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक यह जायज है, एक सिक्के की बया दो सिक्के के बदले जायज है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इस बया के मसले में इमाम साहेब के साथ हैं। किसके साथ? इमाम साहब के साथ हैं। तो कियास यही तकाजा करता है कि शिरकत और मुजारबत के मसले में भी वो इमाम साहब के साथ होंगे। भाई देखिए ऊपर मसला जिक्र हुआ था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं दो सिक्कों की बै एक के बदले जायज नहीं है, चाहे नकद हो फिर भी जायज नहीं, जबकि शेखैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक सिक्के की बै दो सिक्कों के बदले जायज है क्योंकि यह सामान के हुक्म में है। तो वहां पर देखो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम साहिब के साथ हैं। किसके साथ हैं? तो जब इस बै के मसले में इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम साहिब के साथ हैं तो कियास यही तकाजा करता है कि शिरकत और मुजारबत के मसले में भी इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम साहिब के साथ होंगे। मेरे ख्याल बात वाजे नहीं हो रही, फिर समझो, फिर समझो। भाई देखिए यहां इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से दो रिवायतें हो गई, एक रिवायत में वो इमाम साहेब के साथ हैं और एक रिवायत में वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं। पहली रिवायत क्या आई? भाई गुज़श्ता सतर में आया था, अम्मा इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह ताला ला यजूज़ु शिरकतु वल मुजारबतु बिहा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह एक रिवायत के मुताबिक इमाम साहिब के साथ हैं और उनके मुताबिक फुलूस नाफिका के साथ न शिरकत जायज है और न मुजारबत जायज है, और दूसरी रिवायत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से जिसमें वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं, मालूम हुआ फुलूस नाफका के साथ शिरकत भी जायज और मुजारबत भी जायज। साहिब हिदाया फरमाते हैं वल अव्वलु अक्यसु व अजहरु, और पहला कौल ज्यादा कियास के मुताबिक है और ज्यादा जाहिर है, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का जो कौल हमने पहले जिक्र किया कि वो इमाम साहिब के साथ हैं कि फुलूस नाफका के साथ शिरकत भी जायज नहीं और मुजारबत भी जायज नहीं, यह ज्यादा कियास के मुताबिक है और ज्यादा जाहिर है। सवाल पैदा होता है यह कियास के ज्यादा मुताबिक किस तरह है? तो वजह समझ लें। भाई वजह यह कि पीछे बै का मसला जिक्र हुआ था कि वला यजूजु बै उस नैनी बिवाहिदिन बि आयानी हा अलामा उरिफा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफिका में से दो मुअय्यन सिक्कों को बेचना एक सिक्के के बदले में, यह जायज नहीं है। जबकि शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक यह जायज है क्योंकि फुलूस नाफिका सामान के दर्जे में है। तो जब बेअ के मसले के अंदर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इमाम साहब के साथ हैं कि दो सिक्कों की बेअ एक सिक्के के बदले जायज है, तो कयास यही तकाजा करता है कि वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह शिरकत के मसले में भी इमाम साहब के साथ होंगे, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ नहीं होंगे। ये माना है, कहते हैं वल अव्वलु अक्यसु व अजहरु, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का पहला कौल कि जिसके मुताबिक उनके नजदीक शिरकत और मुजारबत फुलूस नाफिका से जायज नहीं, वो ज्यादा कयास के मुताबिक है, व अजहरु और ज्यादा जाहिर है। वान अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और इमाम साहब से रिवायत किया गया है, सेहतुल मुजारबत बिहा, कि इन फुलूस नाफिका के साथ मुजारबत सही है। इमाम साहब से यह भी नकल किया गया है कि फुलूस नाफका के साथ मुजारबत सही है। एक रिवायत तो ऊपर गुजर गई, इमाम साहब फरमाते हैं फुलूस नाफका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज नहीं, लेकिन एक रिवायत इमाम साहब से यह भी नकल की गई है कि फुलूस नाफका के साथ मुजारबत जायज है। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम यहां पर यह कि साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफिका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज है, और शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक फुलूस नाफिका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज नहीं है। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ और इमाम साहिब से एक रिवायत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की तरह भी नकल की गई है। याद रखो, उलमा फरमाते हैं शामी वगैरह के अंदर है कि इस सिलसिले में ज्यादा सही कौल यही है कि फुलूस नाफिका के साथ शिरकत और मुजारबत जायज है। ज्यादा सही बात यही है कि ये जो फुलूस नाफिका हैं, सही कौल के मुताबिक ये दिरहम और दीनार के हुक्म में ही हैं, लिहाजा इनके साथ आकदे मुजारबत भी जायज है और इनके साथ आकदे शिरकत भी जायज है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।